हम भगवान के पवित्र नाम के विषय में चर्चा करते आए हैं और विशेष करके चर्चा का विषय ये रहा है कि भगवान का नाम लेने में कौन से अपराध होते हैं। जब हम भगवान के नाम के प्रति कोई अपराध करते हैं, अर्थात हम गलत तरीके से, गलत भावना से हम भगवान का नाम लेते हैं, तो फिर हमें भगवान का नाम लेने का पूरा फायदा नहीं मिलता है। हमारे भक्ति मार्ग में प्रगति करने में ये एक अड़चन बन जाती है। जैसे किसी राजमार्ग में अगर कई गतिरोधक वहां चीजें हों, तो फिर हम जल्दी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं सकते हैं, बीच बीच में हमें रोकना पड़ेगा और ज्यादा गति हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये भक्ति मार्ग ये एक विशाल राजमार्ग है, जो कि हमको यहां बेलगाम से सीधे भगवान के धाम में ले जाता है, गोलोक वृंदावन, एक भौतिक ब्रह्मांड के परे भगवान का धाम है। ये भौतिक जगत नश्वर है, लेकिन भगवान का धाम शाश्वत है, उसका नाश कभी नहीं होता है। तो भक्ति मार्ग वो मार्ग है जिसके ऊपर चल के हम सहज, बड़े आसानी से भगवान के धाम में पहुंच जा सकते हैं। इस मार्ग के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अगर आपको बेलगाम से मद्रास जाना है, बंबई दिल्ली जाना है, तो कई रास्ते हो सकते हैं। बंबई आपको जाना है तो आप नागपुर होकर भी जा सकते हैं, और आप कलकत्ता होकर भी जा सकते हैं, लंबा रास्ता ले सकते हैं, या तो फिर आप सीधा रास्ता ले सकते हैं, या कोंकण के साइड से रास्ता ले सकते हैं, कितने सारे मार्ग हो सकते हैं। लेकिन भगवान के धाम में अगर आपको पहुंचना है, तो फिर ये एकमात्र मार्ग है, भक्ति मार्ग। इसमें हर एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सोचेगा कि ये मार्ग तो मैंने स्वीकार कर लिया, जो कि बहुत ही कम लोगों में दिखाई पड़ता है। लाखों लाखों लोगों में से विरला ही एक कोई ये कृष्ण भक्ति के मार्ग को स्वीकार करता है, बहुत कम लोग। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सिद्धि के मार्ग में बहुत कम लोग जाते हैं, और जो लोग भक्ति मार्ग में आते भी हैं, अनुभव की बात तो ये है कि कई साल भक्ति करने के बाद भी हमारे हृदय में जो बुरी चीजें हैं वो आसानी से जाते नहीं हैं। द्वेष करना, क्रोध करना, घमंड करना, ये काम की भावना, ये सब कितने सारे बुरे चीजें हमारे मन से जाती नहीं है इतने साल भक्ति करने के बाद भी। तो क्या कारण है? क्या कोई भक्ति मार्ग में कोई कमी है, कोई दोष है? क्या हरिनाम में कोई दोष है? क्यों हम इतने जल्दी से शुद्ध भक्त नहीं हो सकते हैं? तो दोष किस में है, आप क्या सोचते हैं? भक्ति मार्ग में दोष है, भगवान में है, भगवान के नाम में है, किस में है? हमारे अंदर है। हमारे अंदर दोष है, इसलिए हम तेजी से भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे नहीं प्रगति कर पाने का कारण क्या है? हम वो क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हम प्रगति अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं? ये 10 तरह की गलतियां हैं जिनको हरि नाम के प्रति अपराध कहते हैं। नाम अपराध, अपराध जानते हैं ना? अपराध शब्द का अर्थ क्या है? अपराध मतलब क्या? अपराध शब्द का अर्थ क्या होता है? जब किसी का हम अपमान करते हैं, हम कोई गलती करते हैं, सही व्यवहार नहीं करते, तो किसी व्यक्ति का के प्रति हमारा अपराध हो जाता है। तो इसी तरह से भगवान के नाम के प्रति ये 10 नाम अपराध होते हैं। पिछले 2-3 रविवारों में 5 इन नाम अपराधों के बारे में हमने चर्चा की थी। इन नाम अपराधों के बारे में चर्चा करना, सुनना क्यों आवश्यक है हमारे लिए? क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम ये अपराध करते हैं तो हमारे भक्ति में ये गतिरोधक बन जाते हैं। तो अगर हम अपराध क्या हैं ये अच्छी तरह से जानेंगे और अगर इन अपराधों से बच के रहेंगे तो फिर हम अच्छी तरह से प्रगति कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमें जानना चाहिए कि ये अपराध कौन से हैं, क्या हैं, इनका मतलब क्या है, और फिर इनसे बच के रहना है हमें, ताकि भगवान का नाम हम अच्छी तरह से ले सकेंगे। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम भगवान है और भगवान भगवान के नाम है। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसकी जिह्वा पे स्वयं भगवान नृत्य करते हैं। भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से न केवल हमारे सारे हृदय के बुरी चीजें नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु हमें असली फल मिलता है। और वो क्या है? भगवान का नाम जाप कीर्तन करने का असली फल क्या है? भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना जागृत हो जाती है हमारे हृदय में। तो ये 10 नाम अपराध हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए। तो पहले 5 नाम अपराधों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पहला नाम अपराध कौन सा है? वैष्णव निंदा या साधु निंदा, कृष्ण भक्तों की निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है, पागल हाथी का अपराध। जब पागल हाथी किसी बगीचे में जाता है तो क्या करता है? तहस नहस कर देता है, सब नष्ट कर देता है। तो यह साधु निंदा, भक्त निंदा जब हम करते हैं तो हमारे हृदय में जो भी भक्ति का बगीचा है, भक्ति लता बीज, ये पागल हाथी उसको कुचल कर नष्ट कर देता है। इसलिए सबसे भयंकर नाम अपराध है भक्तों की निंदा करना। इसलिए भक्तों का कभी हमें भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरा नाम अपराध क्या है? देवी देवताओं के नाम को भगवान कृष्ण के नाम से स्वतंत्र समझना या उनको समान समझना, मतलब भगवान कृष्ण को और देवी देवताओं को एक जैसा समझना कि ये दोनों एक समान है। लेकिन वास्तव में सत्य क्या है कि भगवान श्री कृष्ण देवी देवताओं के भी स्वामी हैं, उनके प्रभु हैं। देवी देवता जैसे ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि, ये सब भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। उनको कभी भी भगवान के स्तर पर नहीं समझना चाहिए। तो जब ऐसा विचार करते हैं हम कि देवी देवता और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो ये दूसरा नाम अपराध हो जाता है। फिर हम अगर भगवान कृष्ण का नाम लेंगे भी, लेकिन इस विचार से लेंगे, तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। तीसरा नाम अपराध क्या है? गुरु अवज्ञा, मतलब गुरु के आदेश का उल्लंघन करना, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना। गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान का संदेश देने के लिए वो हमारे पास आते हैं, इसलिए उनको प्रसन्न करके, उनके आदेश का पालन करके हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान के धाम में लौटकर जा सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में अच्छी तरह से प्रगति करना चाहता है वो गुरु की आज्ञा का पालन बड़े हृदय से करेगा। चौथा नाम अपराध क्या है? श्रुति शास्त्र निंदनम। पहला नाम अपराध था भक्तों की निंदा करना, और ये चौथा नाम अपराध है शास्त्रों की निंदा करना। शास्त्र मतलब क्या? ये भगवान की वाणी है, भगवान के वचन, जैसे भगवत गीता ये ग्रंथ है, ये शास्त्र है, कितने सारे पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, इन सब को शास्त्र कहते हैं। जो भगवान के आदेश, भगवान का संदेश जिन ग्रंथों में लिखा जाता है उनको शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्रों की निंदा करना ये भी एक नाम अपराध माना जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते लेते शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखता, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है लेकिन सोचता है कि अरे क्या ये भागवत, क्या गीता, क्या ये सब ऐसे काल्पनिक ग्रंथ है, उपन्यास जैसा है, अखबार कैसा, ये वैसे भी ये है, केवल लोगों को नीति के मार्ग में लाने के लिए ये सब ग्रंथ लिखे गए हैं, ये ग्रंथों में जो भी लिखा गया है वो सब सही नहीं है। तो इस तरह से जो शास्त्र में रुचि नहीं रखते, जो विश्वास नहीं रखते हैं, वो लोग भी भगवान का नाम जप करते हुए भी इस भक्ति मार्ग में अच्छी तरह से प्रगति नहीं कर पाएंगे। पांचवा नाम अपराध क्या है? भगवान के नाम के महिमा को काल्पनिक समझना या इसको बढ़ा चढ़ा हुआ समझना। जैसे हम पिछले रविवार को सुन रहे थे कि शास्त्रों में बताया है कि अगर किसी व्यक्ति ने हृदय से, भक्ति भाव से भगवान कृष्ण का नाम एक बार भी लिया तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आज तक अनादिकाल से अनंत कोटि जन्मों में उसने जितने भी पाप किए हैं, इस जन्म में उसने जितने भी पाप किए हैं और आने वाले कई सालों में जितने भी पाप वो करेगा, अगर करेगा तो, इन सारे पापों को भगवान कृष्ण का एक नाम लेने से वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो हम सोचेंगे अरे क्या है ये, एक भगवान का नाम लेने से इतने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? ये तो केवल बढ़ा चढ़ा के शास्त्रों में बताया है ताकि हम लोग को प्रेरणा मिले कि हमें भी भगवान का नाम लेना चाहिए। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि एक कृष्ण नाम लेने से सब पापों से मुक्त। ठीक है, दो पाप से मुक्त, पांच पाप से मुक्त, थोड़े एक साल में किया हुआ पाप से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों सालों के पाप एक नाम से मुक्त हो सकते हैं हम? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला है। इसका मतलब है कि हमें भगवान के नाम में पूरा विश्वास नहीं है, और जब भगवान के नाम में पूर्ण श्रद्धा नहीं होती है तो भगवान के नाम का जप कीर्तन करने का पूर्ण फायदा हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि संशय आत्मा, हमारे हृदय में संशय है। तो ये संशय रहना भगवान के नाम के प्रति, ये भी एक नाम अपराध है, हमारे भक्ति मार्ग में एक गतिरोधक हो जाता है। तो इन पांच अपराधों के बारे में हम आज तक चर्चा कर चुके हैं और आज हम छठे और सातवें और हो सकता है तो आठवें नाम अपराध का चर्चा करेंगे। तो छठा नाम अपराध है हरि नामनी कल्पनम, मतलब भगवान कृष्ण के नाम को ही काल्पनिक समझना। इसके पहले अपराध था भगवान के नाम के महिमा को काल्पनिक समझना, और ये है भगवान के नाम को ही काल्पनिक समझना। यह भगवान के नाम के ऊपर कोई मनगढ़ंत ढंग से उसका कोई मतलब निकालना, कोई भौतिक दृष्टि से भगवान के नाम को देखना और अलग अलग अर्थ उसके निकालना तोड़ मोड़ करके। शास्त्रों में भगवान के नाम के अर्थ बताए हुए हैं, भगवान के अनंत नाम हैं। जैसे कृष्ण, कृष्ण नाम का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षक, सर्व आकर्षति इति कृष्णः। कृष्ण मतलब कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं, ये कृष्ण नाम का एक अर्थ है, कई अर्थ हो सकते हैं। राम नाम का अर्थ क्या है? दिव्य आनंद प्रदान करने वाले। नारायण नाम का अर्थ क्या है? जिनमें सब प्राणी निवास करते हैं, जो सब प्राणियों के शरण है या आश्रय है, निवास स्थान है, ये है नारायण। मधुसूदन नाम का अर्थ क्या है? मधु राक्षस का वध करने वाला। तो ऐसे भगवान के अनंत नाम हैं और हरेक नाम के अनेक अर्थ हो सकते हैं। और ये अर्थ हमें कहां से मिलते हैं? क्या अपने मनगढ़ ढंग से हम इनका उत्पादन कर सकते हैं? नहीं, जो शास्त्र में बताया हुआ है, जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता इत्यादि, इनसे हमें स्वीकार करना चाहिए। या तो फिर जो महान कृष्ण भक्त हुए हैं, उन्होंने जैसे समझाया है भगवान के नाम के अर्थों के बारे में, हमें उनसे सुनना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र, न कि अपने मनगढ़ ढंग से हम कोई अर्थ निकालते रहे भगवान के नाम का। तो ऐसा करने से हम भगवान के नाम के प्रति अपराध कर बैठते हैं। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न होने के कारण ये दिव्य है, चिन्मय है, परम सत्य है, और केवल भगवान का नाम लेने मात्र से हम ऊंचे से ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस बात को नहीं जानते और केवल अलग अलग ढंग से हम अलग अलग मतलब निकालते हैं भगवान के अलग अलग नामों के, तो फिर ये अपराध हो जाता है। हम कभी कभी शब्दकोश का, डिक्शनरी का उपयोग करके हम अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं और फिर बोल सकते हैं कि ये भगवान है। जैसे हरि, हरि शब्द का अर्थ क्या है? सर्व अमंगल हरे, जो सब चीजों का, अमंगल चीजों का हरण करते हैं हमारे हृदय से, वो है हरि। प्रेम दिया मन हरे, और कृष्ण प्रेम देके हमारा मन हर लेते हैं, ये है हरि। हर धातु से आता है, हर मतलब छीन लेना। तो हरि का मतलब है जो गंदी चीजें हमारे हृदय से निकालते हैं और शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में प्रदान करते हैं, ये है हरि शब्द का असली अर्थ, भगवान श्री हरि मतलब कृष्ण। लेकिन हरि शब्द के शब्दकोश की दृष्टि से देखा जाए तो कई अर्थ हो सकते हैं। हरि का शब्द हो सकता है सांप, हरि का शब्द हो सकता है सिंह, हरि का शब्द हो सकता है एक चोर। तो फिर क्या भगवान एक सिंह है, भगवान एक सांप है, भगवान कोई चोर कोई भगवान हो गया? नहीं। तो जो शब्दकोश की दृष्टि से देखता है वो कहेगा कि अरे ये तो सिंह है, सिंह के बारे में बताया गया है। नहीं, तो इस तरह से हम अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। और एक उदाहरण आप सबने अभी भी बताया कि कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक, लेकिन कृष्ण शब्द का और एक अर्थ है काला। तो कोई आदमी सोच सकता है कृष्ण शब्द का अर्थ है काला, काला मतलब अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञान, तो कृष्ण मतलब जो कभी जाने जा नहीं सकते या जो अज्ञान में है वो है कृष्ण, ऐसा मतलब निकाल सकते हैं कोई? और ऐसे कई लोग हैं भी जो ऐसे मतलब निकालते हैं तोड़ मोड़ करके। तो ऐसा करने से क्या होगा, हम किसी गलत निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, भगवान का नाम क्या है कभी नहीं जान पाएंगे, और भगवान का नाम लेते हुए भी उसका असली फल हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपना तर्क अपनी बुद्धि में ही चलानी चाहिए, जैसे शास्त्रों में बताया हुआ है, जैसे महान वैष्णवों ने बताया हुआ है, जैसे है वैसे ही भगवान के नाम को और उनके अर्थों को स्वीकार करना चाहिए। एक बार एक आदमी था, उसके पत्नी ने उसको कहा कि जाकर बाजार से थोड़ा घी खरीद के लाइए, क्योंकि हमें कुछ रसोई में तलना है, तली हुई चीज बनाना है, पकाना है। तो आदमी गया बाजार में, और ऐसे दुकान में गया है जहां की घी बेच रहे थे। तो आप तो जानते हैं जो दुकानदार होता है हमेशा अपने जो माल का प्रशंसा करता है कि मेरे पास जो माल है वो किसी दूसरे दुकान में ऐसा अच्छा माल नहीं मिलेगा, है ना? ये तो दुकानदार को करना पड़ता है, नहीं तो कौन आएगा उसके पास। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो मेरे दुकान में जो घी है इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि देखो तेल के समान सूक्ष्म है ये। तो फिर ये आदमी ने सोचा, अच्छा इसका मतलब है कि तेल घी से अच्छा है, तो मुझे तेल खरीदना चाहिए। फिर वो तेल के दुकान में गया, तो तेल का दुकानदार भी बोलने लगा, अरे मेरे दुकान में जो तेल है इतना स्वच्छ है, देखो ये पानी की तरह है, साफ है। तो आदमी ने सोचा हाँ फिर पानी तेल से अच्छा है। उसने क्या किया, फिर पानी लिया, घर में अपने पत्नी को दिया। तो पत्नी बोले, अरे ये क्या, अब पानी से मैं क्या कुछ तल सकती हूँ, इसके लिए घी चाहिए। तो इस तरह से देखिए, हम अपना तर्क लगाते हैं, फिर धीरे 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 से जो असली मतलब होता है, असली अर्थ होता है, वो हम भूल जाते हैं, हम जान नहीं सकते हैं। तो ये है छठा नाम अपराध, कि कोई अलग अलग तरह के अर्थ भगवान के नाम में लगाना। तो इसका प्रायश्चित कैसे हो सकता है, कैसे इस अपराध से हम मुक्त हो सकते हैं? जैसे पांचवें नाम अपराध के साथ था, वैसे भी हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें अपने गलती को मानना चाहिए कि हमें कभी ऐसे भगवान के नाम के प्रति मनगढ़ंत ढंग से अर्थ निकालने नहीं चाहिए, और वैष्णवों के पास में जाकर भगवान का नाम का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि भगवान का नाम क्या है, ये क्या तत्व है। और ऐसे भक्तों के संग में आकर जब हम पश्चाताप करेंगे, तब इस अपराध से, छठे अपराध से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये हुआ छठा नाम अपराध। क्या है छठा नाम अपराध? कोई गलत मनगढ़ंत ढंग से कोई गलत अर्थ देना भगवान के नाम को, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। सातवां नाम अपराध, नानो बलाद्यस्य ही पाप बुद्धि ही न विद्यते तस्य यमेर ही शुद्धि ही। इसका मतलब है, नानो बलाद्यस्य ही पाप बुद्धि, वो बुद्धि या वो मत जिससे कि हम भगवान के नाम के बल पर पाप करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम तो जानते हैं कि भगवान का नाम लेने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बराबर है ना? तो फिर कोई आदमी सोचता है कि चलो एक भगवान का नाम लेने से लाखों लाखों पाप नष्ट हो जाते हैं, तो अच्छा आइडिया है, क्या करेंगे, पाप करेंगे, फिर हरे कृष्ण बोलेंगे, सारे पाप नष्ट हो गया, फिर दोबारा पाप करेंगे, फिर से हरे कृष्ण बोलेंगे, वो पाप नष्ट हो गया। तो हम पाप करते जाएंगे जानबूझकर, ये सोचकर कि पाप करेंगे भी तो हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करके पाप को धो डालेंगे, क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं। इसका मतलब है कि भगवान के नाम के बल पर हम पाप करते हैं, ये बहुत बुरी चीज है, बहुत भयंकर अपराध है। ये भावना अगर कोई व्यक्ति रखता है तो कभी भी भक्ति मार्ग में वो प्रगति नहीं कर पाएगा, खतरनाक भावना है ये। शास्त्र में हमें सावधान किया गया है कि कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ये आदमी का पतन करा देता है और आदमी की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है। हो सकता है कि भक्ति मार्ग में आने के पहले किसी व्यक्ति ने बहुत सारे पाप किए हो सकता है, लेकिन एक बार जब वो भक्ति मार्ग में आ जाता है, उसे भगवान के नाम के बारे में ज्ञान मिल जाता है और वो भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है, फिर क्या होता है, धीरे 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 से उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। उसके बाद उसे कभी वो पाप नहीं करने चाहिए जो कि वो पहले किया करता था। उसे केवल भगवान के नाम से और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपया मुझे पाप करने से बचाइए। और अगर भी मन में इच्छा होती है पाप करने की, फिर भी भगवान का नाम हृदय से लेकर पाप की प्रवृत्ति से हमें बच जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे सोचेगा कि मैं पाप करता रहूं जानबूझकर, तो बहुत गलत बात है। अगर गलती से भगवान का भक्त कुछ ऐसे पाप कर बैठता है, तो फिर भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि इतने जन्मों से आदत है पाप करने की। और अगर अचानक गलती से पाप हो जाता है किसी भक्त से और भगवान के सामने आकर वो क्षमा याचना करता है, तो भगवान क्षमा कर भी देते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त है जो भगवान का नाम लेता है और पाप करता है और फिर से आके भगवान के सामने क्षमा याचना करता है, फिर से जाके पाप करता है, फिर क्षमा मांगता है, तो फिर क्या मतलब है इसका? फिर भगवान क्षमा नहीं करेंगे। तो उस समय उस वक्त को, उस व्यक्ति को अपने पापों का फल मिलेगा, उसे भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि जो हम दीक्षा के समय व्रत लेते हैं कि हम रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हम चार नियमों का पालन करेंगे, मतलब कभी मांसाहार नहीं करेंगे, कभी जुआ नहीं खेलेंगे, व्यभिचार नहीं खेलेंगे, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, तो फिर हमें सख्ती से इन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर बाद में हमने तोड़ा है तो फिर ये बड़ा पाप हो जाता है। स्कंद पुराण में एक श्लोक है जिसमें भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, और इस श्लोक में हम देखते हैं कि भक्त की भावना कैसे होती है। भक्त हमेशा बड़ा नम्र होता है, और इस श्लोक में भक्त प्रार्थना करता है भगवान से कि हे प्रभु, संसार में तो कई पापी लोग हैं, लेकिन इन पापी लोगों में से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। इस संसार में बहुत सारे अपराध करने वाले लोग हैं, लेकिन इन सारे अपराधी लोगों में से मैं सबसे बड़ा अपराधी हूं। मेरे इतने पाप हैं और अपराध हैं कि आपके सामने आकर इनके बारे में मुझे बोलना, कबूल करना कि मैंने ऐसे गलती की है, ऐसा करने के लिए भी मुझे शर्म आता है। ऐसे भक्त प्रार्थना करता है स्कंद पुराण में। इसका मतलब है कि भक्त को हमेशा कोई गलती करने के बाद बहुत पश्चाताप होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि अरे अरे मैंने पाप कर दिया। और सच्चा प्रायश्चित क्या है कि हम दोबारा वो पाप कभी नहीं करें। हम प्रायश्चित करेंगे, हम शर्मिंदा होंगे, फिर से पाप करेंगे, फिर से शर्मिंदा होंगे, फिर से पाप करेंगे, तो ये निंदनीय चीज है, ऐसा कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई धर्मों में ऐसे एक पद्धति है कि हफ्ते में एक दिन आप चर्च में जाकर फादर के सामने एकांत स्थान में आपके पापों के बारे में आप पापों को मान्य करेंगे कि पिछले हफ्ते में मैंने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, जितने भी लिस्ट पाप का लिस्ट लेकर जाएंगे, इतने सारे पाप मैंने किए, हृदय खोलकर आपने बता दिया पादरी को। पादरी ने कहा ठीक है, आपने बता दिया ना, अभी बस आपके पाप माफ हो गए, क्षमा हो गए। तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है, सोमवार आ गया कि फिर से पाप शुरू। फिर जब रविवार आ जाता है फिर से जाकर क्षमा, हमने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, इन सब के लिए हमें क्षमा कीजिए। तो प्रभुपाद कहते थे कि ऐसे भावना जो है इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी तरह से श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में हम परीक्षित महाराज के बारे में सुनते हैं, जो जिनको कि सुखदेव गोस्वामी ने पांचवें स्कंद के अंत में वर्णन किया हुआ होता है कि अलग अलग तरह के नरक कैसे होते हैं इस ब्रह्मांड के भीतर। पांचवें स्कंद में 28 तरह के नरक लोगों का वर्णन आता है, और अलग अलग तरह के पापी लोगों को इन अलग अलग नरक लोगों में जाना पड़ता है उनके पापों का फल भुगतने के लिए। तो परीक्षित महाराज जब इस बात को सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं कि इतनी पीड़ा, इतना कष्ट इस संसार के बद्ध जीवों को झेलना पड़ता है। तो उन्होंने पूछा कि इस नरक लोक से हम कैसे बचें, किस तरह से बचें। जो आदमी पाप करता है पाप के फलों से मुक्त कैसे हो जाए ताकि वो नरक से बच सके। सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले उनको एक उत्तर दिया कि हमें प्रायश्चित करना चाहिए हर एक पाप के लिए। वैसे सुखदेव गोस्वामी केवल परीक्षित महाराज की परीक्षा ले रहे थे, वो भी जानते थे कि ये प्रायश्चित का जो मार्ग है हर एक पाप के लिए अलग अलग कोई विधि विधान का पालन करना इस पाप को नष्ट करने के लिए, ये हम कहां तक करते बैठेंगे, पाप करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, पाप करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, इसका कोई अंत नहीं है, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में अटक कर ही रहेंगे। तो फिर परीक्षित महाराज ने जब ये बात सुनी तो वो कहने लगे कि ये मुझे ठीक नहीं लगता है, ये मुझे ऐसे लगता है जैसे एक हाथी का स्नान है। आपने कभी देखा है कि हाथी क्या करता है, कैसे स्नान करता है? नदी के अंदर या तालाब के अंदर जाता है, अच्छी तरह से स्नान करता है, जल क्रीड़ा बड़े आनंद से करता है, अपने सूंड से पानी सब जगह छिड़कता है और फिर बाहर आकर मिट्टी में लौट जाता है। फिर क्या फायदा हुआ उसके स्नान का? कोई फायदा नहीं। तो ठीक उसी तरह से परीक्षित महाराज बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, भगवान की भक्ति करता है और फिर जाके पाप करता है, क्या अर्थ है, क्या फायदा है इसका? जैसे कि वो हाथी स्नान करता है, मतलब भगवान का नाम लेता है, शुद्धिकरण की क्रिया। भगवान का नाम लेने से हम शुद्ध होते हैं, फिर से गंदी चीज करना, फिर से पाप करना। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि ऐसे प्रायश्चित में कोई मतलब नहीं। फिर सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न होकर उन्हें सत्य बताते हैं कि अगर वास्तव में हमें पापों से मुक्त होना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के मार्ग को स्वीकार करना होगा। केचित केवलया भक्त्या नारायण परायण अघम धुन्वंती काचनेन निहारम इव भास्कर। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अगर हमने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के मार्ग को स्वीकार किया तो भक्ति के उदय होने के पहले ही सारे पाप हमारे अंदर से नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से परीक्षित महाराज संतुष्ट हुए इस उत्तर से। मतलब भगवान की भक्ति मार्ग को स्वीकार करने से बड़े आसानी से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें बार बार पाप और नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में चैतन्य चरितामृत में एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कालिदास। उनका नाम तो था कालिदास लेकिन थे वो वास्तव में कृष्णदास। भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, महाभागवत थे। उनके माता पिता ने नाम कालिदास रख दिया तो कालिदास नाम रह गया, लेकिन असलियत में थे महाभागवत कृष्ण भक्त। भगवान के नाम के अलावा वो और कुछ भी नहीं बोलते थे। अपने हर दैनिक कार्य में भगवान का नाम लेते थे। कपड़े धोते समय, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, हर समय भगवान का नाम लेते थे। बड़े शुद्ध भक्त थे। तो उनके बारे में बताया जाता है कि कभी कभी वो डाइस खेलते थे मजाक में। डाइस जानते हैं, पे नंबर क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे करके डालते हैं, 6 नंबर होते हैं उसमें,
पासे।
तो जुगाड़ के समय खेलते हैं। बच्चे लोग लूडो वगैरह खेलते टाइम में करते हैं, जो शकुनी ने किया था युधिष्ठिर महाराज के साथ, जानते हैं ना। तो ये कालिदास भी कभी कभी ऐसे करते थे और फिर मजाक में ऐसे वो करते थे और फिर वो डालते समय बोलते थे हरे कृष्णा। तो वहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चेतावनी देते हैं सारे भक्तों को कि कालिदास की नकल नहीं करना। वैसे जो ये डाइस खेलना ये तो एक जुआ हो जाता है। भले ही कालिदास खेल रहे हो लेकिन वो तो मजाक में कर रहे थे। वो महाभागवत थे तो वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए। महान वैष्णवों के कार्यों को हम समझ नहीं सकते हैं, तो अगर हम उनकी नकल करने जाएं और अगर हम सोचें कि हम भी ऐसा करेंगे, हम पाप करेंगे लेकिन हरे कृष्ण बोलते बोलते पाप करेंगे, हम भी जुआ खेलने जाएंगे, मटका सट्टा जो भी खेलने जाएंगे और खेलते खेलते हरे कृष्ण बोलेंगे और पाप से मुक्त हो जाएंगे, नहीं। हम शराब के अड्डे में जाएंगे, शराब पीते पीते हम हरे कृष्ण बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना है। हाँ, अगर कोई शराबी पहले से हो और वो हरे कृष्ण शराब पीते समय बोलता है तो वो ठीक है, फिर वो शराब छोड़ देगा धीरे धीरे। लेकिन कोई भक्त अगर फिर शराब पीना शुरू करे हरे कृष्ण बोलकर, वो ठीक नहीं। तो इस तरह से भक्त को चाहिए कि वो सारे पापों से हमेशा दूर रहे। हो सकता है कि पुरानी आदतों की वजह से ये मन में विचार आ जाए। शरीर अपना भक्ति में लगा हुआ है लेकिन मन में हमारे पुराने पापों का स्मरण आ रहा है। हो सकता है हम क्लास में बैठे हैं, हम गीता का भागवत का क्लास सुन रहे हैं मंदिर में बैठकर भी, शरीर तो यहाँ है और हमारी आंखें भी वक्ता की ओर हैं, लेकिन मन में हम कुछ और सोच रहे हैं। भक्ति में आने के पहले हम क्या करते थे, कैसा सिनेमा देखते थे, अरे वो सिनेमा में हमने ऐसा ऐसा दृश्य देखा था। मन उन चीजों के ऊपर चिंतन मनन करता है क्योंकि अभी तक हम परिपक्व नहीं है, भक्ति मार्ग में कच्चे हैं। इसलिए हालांकि हमारा शरीर भक्ति में लगा हुआ है लेकिन मन में ये पाप के विचार आते रहते हैं। तो ऐसे अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, पाप करने नहीं चाहिए, हमें भगवान के नाम में श्रद्धा रखनी चाहिए कि भगवान का नाम लेने से हमारे सारे पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। पाप के तीन स्तर होते हैं। पाप का पहला स्तर है अज्ञान। पाप का दूसरा स्तर है पाप करने की इच्छा। और पाप का तीसरा स्तर है पाप का कार्य, जो असली पाप होता है। तो जो पहले दो स्तर होते हैं पाप के, मतलब अविद्या और पाप करने की इच्छा, ये तो आसानी से भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब भक्त पूरी तरह से पक्का नहीं होता है तो पुरानी आदतें उसको कभी कभी मजबूर कर सकती हैं बुरे विचार लेने को मन में। लेकिन श्रद्धा पूर्वक अगर वो भगवान के नाम का आश्रय ले तो फिर इस प्रवृत्ति से वो मुक्त हो सकता है। कभी भी भगवान के नाम के बल पर उसे पाप नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। तो ये है सातवां नाम अपराध। तो क्या है सातवां नाम अपराध? भगवान के नाम के बल के ऊपर पाप करना। तो जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो भक्ति में अच्छी तरह से प्रगति कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसके लिए बहुत बड़ा अड़चन बन जाएगा ये। फिर आठवां नाम अपराध, धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया शारयम अपि प्रमादः। शास्त्र में बताया जाता है कि अगर हम भगवान के नाम को किसी साधारण भौतिक कार्य से तुलना करते हैं तो ये भी एक बड़ा नाम अपराध हो जाता है। खास करके अगर भगवान के नाम की तुलना हम किसी पुण्य कार्य से करें। इस जगत में बहुत सारे पुण्य कार्य हो सकते हैं। कर्म दो तरह के होते हैं ना, आप जानते हैं कौन से दो तरह के कर्म होते हैं? एक है पाप और दूसरा पुण्य। इस संसार में ज्यादातर लोग ये दो तरह के कर्म करते हैं, पाप और पुण्य। तो अक्सर ये देखा जाता है कि लोग पुण्य और भक्ति में अंतर नहीं जानते हैं। लोग सोचते हैं कि पुण्य काम ही भक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुण्य काम क्या है, कोई उदाहरण दे सकते हैं आप पुण्य कर्मों के उदाहरण? कुआं खोदना ताकि सबको जल मिले, लोगों को जल बांटना पीने के लिए, कोई पियाऊ वगैरह सड़क में राजमार्ग में कहीं बना देना ताकि सबको फायदा मिले, और क्या, पेड़ लगाना सब जगह ताकि जो प्रवासी हैं यात्री हैं उनको छांव मिले, और हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, अंधों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, रोगी लोगों को औषध देना, दान देना, ये सब चीजें पुण्य कर्म कहलाते हैं। तो ऐसे पुण्य कर्म से क्या फायदा मिलता है? हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है, हमें बहुत भोग की सुविधा मिल सकती है, हमें भौतिक सुख मिल सकता है। जो भी लोग अभी ऐसी अवस्था में हैं, जिनको बहुत धन है जिनके पास, जिनको बहुत सुंदर रूप है, जिनको बड़ा नाम मिला है समाज में, जो बड़े अच्छे स्वास्थ्य के हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये सब उनको इसीलिए मिला है कि कोई पूर्व जन्मों में उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, तो पुण्य कर्मों का फल उनको इस रूप में मिलता है। लेकिन स्वर्ग लोग भी इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर ही है, तो पुण्य कर्म करने से हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, पाप करने से हमें नरक लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन जब हम स्वर्ग लोक में जाते हैं और हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो हमें फिर से पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। उसी तरह से जब हम पाप करके नरक लोक में जाते हैं तो जब हमारे पाप क्षीण हो जाते हैं तो हम फिर से पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस तरह से चाहे हम पृथ्वी में हो, हम नरक में हो, हम स्वर्ग में हो, ये तीनों ही जगह इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर हैं। हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं होते पाप को पुण्य करके। लोग सोचते हैं कि हाँ, हम समझते हैं कि पाप करने से हम नरक में जाएंगे लेकिन पुण्य करने से हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुण्य करने से भी हम जन्म मृत्यु के चक्कर में ही रहते हैं, केवल एक भौतिक दृष्टि से ज्यादा सुखी अवस्था में रहते हैं, भौतिक भोग की सुविधा हमें मिलती है। लेकिन भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति ये एक बहुत अद्भुत, निराली, अनमोल चीज है। भगवान की भक्ति या भगवान के नाम की तुलना किसी भी भौतिक चीज से नहीं की जा सकती। भगवान का नाम लेने से, भगवान की भक्ति करने से हम इस भौतिक ब्रह्मांड के परे चले जा सकते हैं, जन्म मृत्यु के पार हो सकते हैं, हम भगवान के धाम में जा सकते हैं जो कि इस ब्रह्मांड के परे है। लेकिन पुण्य करके हम कभी भगवान के धाम में नहीं जा सकते, हम ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक जा सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करके हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। भगवान की भक्ति या भगवान के नाम के सामने ये सारे पुण्य कार्य जो हैं, ये तुच्छ हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। भगवान का नाम ये भगवान का अवतार है। भगवान के नाम को शब्द अवतार कहा जाता है कि भगवान शब्द के अवतार में प्रकट हुए हैं, ध्वनि, ध्वनि के अवतार में। तो जब हम हरे कृष्ण कहते हैं, हमें जानना चाहिए कि ये भगवान का अवतार है, शब्द रूप में, ध्वनि रूप में। जब हम पुण्य कार्य करते हैं तो उस कार्य में और उस कार्य के फल में अंतर होता है, लेकिन भगवान का नाम जब हम लेते हैं, जो साधन हमारा है, वो उसमें और साध्य में कोई अंतर नहीं होता। क्योंकि भगवान का नाम हम लेते हैं किस लिए? भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए। ये हमारे जीवन में एक ही उद्देश्य है। चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है कि हे प्रभु, हमें कोई धन नहीं चाहिए, हमें कोई ऊंचा जन्म नहीं चाहिए, हमें कोई सुंदर स्त्री पुरुष का संग नहीं चाहिए, हमें बहुत सारे अनुयायी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर केवल आपकी अहितु की सेवा, भक्ति करने का मौका चाहिए, केवल यही एकमात्र चीज हमको चाहिए। तो ये है शुद्ध भक्ति। तो भगवान के भक्त भगवान कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? केवल भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये एक ही कारण है कि हम भगवान का नाम लेते हैं, और कोई कारण नहीं। ये असली भक्त होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचे कि भगवान का नाम का इस्तेमाल मैं करूंगा कोई भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए, मुझे कोई भोग चाहिए, मुझे कोई मोक्ष चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति ये नहीं जानता कि भगवान का नाम आध्यात्मिक है और शुद्ध है, और वो भगवान के नाम को एक साधारण पुण्य कर्म समझ रहा है। अगर भौतिक पुण्य हमें प्राप्त करना है तो अलग अलग तरह के व्रतों का पालन कर सकते हैं, हम कुछ त्याग कर सकते हैं, अनेक तरह के जो यज्ञ हैं उनको कर सकते हैं, होम कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम इनसे भिन्न है। भगवान का नाम पूरी तरह से शुद्ध है। अलग अलग शास्त्रों में बताया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति सोचे कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने से हमें भगवान का नाम जप करने का लाभ मिलेगा, तो वो व्यक्ति नास्तिक है और उसको यमराज द्वारा दंड मिलेगा। तो हम सोच सकेंगे, अगर हम सोचें कि अश्वमेध यज्ञ पुराने जमाने में राजा किया करते थे पुण्य को प्राप्त करने के लिए, और अगर कोई व्यक्ति 1 या 2 भी करता था तो बहुत बड़ा राजा माना जाता था, और विशेष ऐसे राजा थे जैसे महाराज पृथु, जिन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है राजा, उसको इंद्र का पद मिलता है। तो देखिए कितने कम लोग थे जिन्होंने कि ये 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। लेकिन चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सोचे कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण का 1 नाम का बराबर है, तो वह नास्तिक है। इसका मतलब कि भगवान श्री कृष्ण का 1 नाम इतना महान है, इतना महान है कि उसके सामने 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी कम हो जाते हैं। हम नहीं कर सकते तुलना। तो जो व्यक्ति इस तरह से भगवान के नाम की तुलना करता है किसी भौतिक चीज से, वो नास्तिक के बराबर है और दंडनीय है। ऐसा चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। आगे चल के श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये भी बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गायों को दान दिया, जो कि एक बहुत महान पुण्य कांड माना जाता है, अगर किसी व्यक्ति ने गंगा और यमुना के संगम पे लाखों साल निवास किया, जो कि और एक पुण्य कार्य समझा जाता है, और अगर इसी किसी व्यक्ति ने सोने का पहाड़ ब्राह्मणों को दान में दे दिया, जो कि एक बहुत विशाल पुण्य कार्य समझा जाता है, फिर भी जितना उसको लाभ मिलेगा वो भगवान के नाम का जाप करने का 100वां भाग से भी कहीं कम है। कहने का मतलब है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न होने के नाते वो इतना महान है, इतना विशाल है कि इसकी तुलना किसी भी भौतिक चीज से नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पुण्य कार्य हो या महान पुण्य कार्य हो। इस तरह से जब हम भगवान का नाम लेते हैं, किसी भौतिक उद्देश्य से नहीं लेना चाहिए, हमें केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम के पास आए और भगवान का नाम का उच्चारण करे, हरे कृष्ण महामंत्र बोले और भगवान के नाम से कोई भौतिक चीज मांगे, उसे मिल भी जाएगा, लेकिन उसे केवल भौतिक भोग मिलेगा। जो चीज उसने मांगा है उसको वो मिलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। तो खैर, जो भी है, हमें भगवान कृष्ण के पास आना चाहिए। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उधार दी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। श्रीमद भागवत में बताया जाता है कि चाहे हमारे मन में कितने सारे भौतिक कामनाएं क्यों न हो, हमारे मन में चाहे कोई भौतिक कामना न हो, हमारे मन में चाहे मोक्ष की कामना हो, किसी भी अवस्था में हमें भगवान कृष्ण के शरण में ही जाना चाहिए, देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। तो फिर ये 8वें नाम अपराध का सार ये है कि हमें कभी भी भगवान के नाम को एक कर्म कांडीय कार्य नहीं समझना चाहिए, एक साधारण भौतिक पुण्य कार्य नहीं समझना चाहिए, और भगवान के नाम को किसी भौतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान से केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय में आपके प्रति शुद्ध भक्ति जागृत हो जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये भगवान के नाम के प्रति एक अपराध हो जाएगा और हमारे भक्ति के प्रगति में गति रोधक बन जाएगा। तो ये था आठवां नाम अपराध। तो क्या है आठवां नाम अपराध, कोई बताएंगे? आठ नाम अपराध। अभी आप सब आठ नाम अपराध क्या है ये जानने में एकदम मास्टर हो गए, निपुण। अभी आप सब ये आठ नाम अपराधों से हमेशा बचकर रहेंगे। केवल दो नाम अपराध रह गए, वो अगली बार इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी के कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है?
भक्ति और पुण्य कार्य दोनों करता है तो उसकी क्या गति होती है, वो कौन से स्थिति को प्राप्त होते हैं?
अगर कोई व्यक्ति दोनों कार्य करता है, भक्ति भी करता है और पुण्य भी करता है, तो उसको कौन सी गति की प्राप्ति होगी? अगर आप तेल और पानी मिलाएंगे, जब आप कोई चीज तल रहे हैं, तो आपका पदार्थ कैसे होगा? जवाब मिल गया आपको? जिस हद तक आपने पानी मिलाया तेल में, उस हद तक गड़बड़ हो जाएगा। कि जिस हद तक हमने भक्ति में मिलावट डाली है पाप और पुण्य की, उस हद तक हमें शुद्ध भक्ति का फल नहीं मिलेगा, और जिस हद तक हम भक्ति कर रहे हैं उतना फल हमको मिलेगा। ठीक है,
तो उसको भक्ति का फल नहीं मिलेगा, सिर्फ पुण्य मार्ग को, पुण्य कर्मों का फल मिलेगा और स्वर्ग को ही जाएगा। जैसे कि आपने कहा पुण्य कर्म करने वाला स्वर्ग को जाता है, तो फिर उसको भक्ति का फल नहीं मिलेगा, साथ साथ सिर्फ पुण्य कर्मों का फल मिलेगा, तो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है?
अगर व्यक्ति पुण्य कर रहा है और भक्ति भी कर रहा है, लेकिन भक्ति भक्ति भाव से कर रहा है, पुण्य भाव से नहीं। अगर भक्ति पुण्य भाव से करेगा तो वो क्या हो जाता है? वो नाम अपराध हो जाता है, तो उसे वो भोग स्वर्ग वगैरह मिल जाएगा, भक्ति नहीं मिलेगी। अगर वो भक्ति भक्ति भाव से कर रहा है तो उसको भक्ति का फल मिलेगा, भक्ति में प्रगति करते जाएगा वो। और अगर वो पुण्य कर रहा है तो उसे पुण्यों का फल भी मिलेगा। तो अगर उसे पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक में जन्म लेना है, स्वर्ग में जन्म लेगा, लेकिन उसकी भक्ति जारी रखेगा, और फिर स्वर्ग लोक में जो उसके रहने की जीवन की अवधि है वो समाप्त करके पुनः पृथ्वी लोक पर आएगा, तो जो उसने भक्ति की है आज तक इतने जन्मों में, वो उसके पास कायम रहेगी और फिर वो आगे भक्ति करता रहेगा। ऐसे कई जन्म बीत जाएंगे जब तक कि वो शुद्ध भक्ति की प्राप्ति नहीं करता है। जब शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेगा, जब पाप और पुण्य दोनों के मिश्रण से मुक्त हो जाएगा, तब वो शुद्ध भक्त होकर भगवान के धाम में लौटकर चले जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा।
आपने कहा कि जो कुआं खोदना या अंधों को मदद करना वगैरह पुण्यकर्म हो जाता है, लेकिन इस जगत में अगर किसी व्यक्ति को अपना गुजारा चलाना है तो उसको लौकिक कर्म भी करना पड़ता है उसको। तो इस हिसाब से अगर किसी ने समझिए इंजीनियरिंग कॉलेज खोला कि विद्यार्थियों को शिक्षण का ये मिले, उनको सुविधा मिले, तो इसमें क्या बुराई?
आप खोलना चाहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज?
नहीं, मतलब
बुराई कुछ नहीं है, इतना ही है कि आपके भगवान के धाम में लौट कर जाने के लिए आप उतना देरी कर रहे हैं बस। हम कॉलेज स्कूल हॉस्पिटल खोलते रहेंगे, लेकिन बहुत जन्म संसार में फिर से जन्म लेते रहना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने के लिए और भी हमें चांस मिलेगा अगले जन्म में। हम खोलते बैठ सकते हैं हर जन्म में, स्कूल हॉस्पिटल कॉलेज पेड़ कुएं सब खोलते रह सकते हैं, लेकिन भगवान के धाम में जाएंगे नहीं। अगर भगवान के धाम में जाना है तो फिर हमें एकाग्र चित्त से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हाँ, अगर हम भगवान की सेवा के लिए कुआं खोद रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए वृक्षारोपण कर रहे हैं, भगवान के भक्तों की मदद हम कर रहे हैं, तो फिर वो अलग बात है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। लेकिन अगर भगवान से संबंधित नहीं है वो, तो ऐसे कार्य केवल पुण्य कर्म कहलाते हैं। ठीक है,
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम अगर किसी राह से गुजर रहे हो तो एक पीड़ित व्यक्ति है वो भक्त भी नहीं हो सकता भगवान का, लेकिन पीड़ित है, बहुत पीड़ित अवस्था में मरने वाला है, तो हमारे पास आपने जैसे बताया प्रसाद हो तो देना चाहिए उसको, अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ तो देना पड़ेगा उसको। तो इस भावना से अगर हम उसको मदद करेंगे कि अगर मैं या कोई भी मेरा मित्र भी है तो बहुत परेशानी में है, तो मैं अगर इसको मदद करूंगा तो मेरे से उसका जो भावना है फेवरेबल हो जाएगा, और बाद में मैं उसको कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकता हूँ, ऐसा भावना रख के अगर मैंने उसको मदद किया तो उसमें कुछ बुरा है क्या?
दो बातें हैं, एक अगर कोई सड़क पे एक्सीडेंट से घायल हुआ व्यक्ति है तो क्या करना चाहिए, मदद करने में कोई बुराई नहीं है। कल अगर हमारे एक्सीडेंट हो जाए, हम सड़क पे गिर जाए, कोई हमारे मदद के लिए नहीं आएगा फिर, तो मदद करने ये कोई भक्ति की बात नहीं है, इंसानियत की बात है, जो साधारण इंसान है वो करेगा इसको। लेकिन जब आप भौतिक भावना ज्यादा हो जाती है तो इंसानियत भी आदमी खो बैठता है। जैसे बंबई में घर से अपने दफ्तर जाने के लिए लोग रेलगाड़ी में सफर करते हैं, आप जानते हैं ना, बंबई में बहुत भीड़ होती है, बंबई के रेलगाड़ियों में शहर के भीतर जो जाती है, बंबई तो बहुत बड़ा शहर है ना, तो एक कोने से दूसरे शहर कोने जाने में रेलगाड़ी में जाना पड़ता है, तो इतनी भीड़ होती है सुबह के समय और शाम के समय कि कई बार हर रोज थोड़े ना थोड़े लोग तो गिर ही जाते हैं नीचे, तो टांगते हैं बाहर, लटक लटक के जाते हैं, जगह नहीं है ट्रेन में, गिर जाते हैं। तो लोग आजकल इतने इंसानियत खो बैठते हैं कि कोई परवाह नहीं करता, एक आदमी गिर गया नीचे, उनको देर हो जाएगा ना, दफ्तर में लेट पहुंचेंगे, तो ये हमने ऐसी परिस्थिति बना ली है। तो किसी ऐसे व्यक्ति नीचे पड़ा हो उसको मदद करने में क्या बुराई है, ये तो केवल इंसानियत है, आदमी को कम से कम इंसान बनना चाहिए और भक्ति साथ साथ कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम सोचते हैं कि किसी व्यक्ति की हम मदद करेंगे जो हमारा मित्र है, ये सोचकर कि हमारी मदद की वजह से वो हमारे प्रति अनुकूल भावना रखेगा, फिर हम उसको कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे और फिर वो कृष्ण भक्त शायद बनेगा, ठीक है, लेकिन आपको ये भी सावधान रहना है कि ऐसा न हो कि आप दुनिया भर के लोगों को मदद करते रहे हैं और वो आपके पद को स्वीकार नहीं करे, तो आपको ये निर्णय भी लेना है कि क्या उचित है क्या नहीं है। जैसे जैसे हम भक्ति में परिपक्व होते रहते हैं वैसे वैसे भगवान हमको वो सद्बुद्धि देते हैं जिससे हम विवेक कर पाएंगे कि किस हद तक, कब, किसको, किस परिस्थिति में कैसे हमें मदद करना चाहिए, ठीक है।